देखिए, आप अपनी जिंदगी में अल्लाह को दिन में 17 बार कह के आते हैं, या कना बुदो या कनस्तैन, और 17 बार आप कह के आते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह प्लीज शो मी द राइट पाथ, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो जब अल्लाह दिखाने लगता है तब कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं हिदायत चाहिए, अभी तो मैं बहुत जाऊंगू, आई एम टू यंग, और अभी तो स्वीट है अभी नहीं। यानी जब अमली जिंदगी देखें और नमाज में किए हुए कौल इकरार को देखें, तो क्या सच बताएं कोई एक ही डायरेक्शन समझ आती है? ये हमारी सदी का अलमिया है, 18th सेंचुरी। आपको तक अलामा इकबाल का जो दौर है उनकी पोइट्री आप पढ़ के देख लें, वो 18th सेंचुरी के थे लास्ट। आज 19 गुजार कर हम 20th में शुरू जा चुके हैं बस। और अलामा इकबाल के मैं अशार कभी पढ़ूँ ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, 18th सेंचुरी में अलामा इकबाल इतना रोते थे, तो अगर आज 2015 में आ जाएं तो वो तो हार्ट अटैक ही हो जाता उनको भी। जब आपको था कि वो कुर्तुबा मस्जिद में आए थे, और अलहमद की है ना पोइम्स, और ये जो उन्होंने कहा ना कि मगरिब के मुसलमानों की हालत को देखकर दिल मेरा होता है सी पारा, और सी फारसी में कहते हैं 30 को, ये जो हम लफ्ज़ कहते हैं ना सपारा, एक सपारा पढ़ लो पहला सपारा, ये सपारा नहीं है, ये सी पारा लफ्ज़ है, यानी 30 टुकड़े। कहते हैं मेरे दिल के 30 टुकड़े हो जाते हैं जब मैं वेस्ट में मुसलमानों को देखता हूँ कि कितना ये इन्फ्लुएंस्ड है और कितनी तेजी से इस्लाम से दूर है। ये उनकी सोच वहां थी। आज के दौर में आप देखिए सारे ऐसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत रोशनी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो माहौल की धुंध में खो गए। ये नमाज और रोजा जिसकी अब हम बातें कर रहे हैं, ये हमें कुछ कामों के करने का मशवरा देता है। नमाज की तो हमने थोड़ी बात कर ली, इसलिए कि नमाज के बगैर तो रोजा भी नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए दौड़ धूप नहीं करते, अल्लाह के दीन को नाफिज करने की दौड़ धूप नहीं करते, तो सॉरी, क्या आपने नमाज की एनर्जी को मिसयूज किया? कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि नमाज से मिलता क्या है। वो कहते हैं और क्या करें, हम दूसरी भी नमाज का इंतजार ही करते हैं। देखिए नबी सल्लम का जहां तस्कर आता है ना, हमारा दिल मोहब्बत से भरता है। मुसलमान होने के नाते हम उनकी छोटी छोटी सुन्नतों पे बहुत तवज्जो देते हैं ना, देते हैं या देना चाहते हैं। रबीउल अव्वल आएगा तो हम बहुत मोहब्बत से उसकी बात करेंगे, मिसवाक की सुन्नत हमें अच्छी लगती है, तेल लगाने की सुन्नत अच्छी लगती है, खाने के बाद मीठा खाने की सुन्नत हमें बहुत ही अच्छी लगती है। पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन मशहूर है हमारे यहाँ, तो ठीक है मान लेते हैं। 100 सुन्नतों के नाम पे अक्सर किताबें भी हैं, छोटी छोटी सुन्नतें। ये सब सुन्नतें हैं इंडिविजुअल, हमारी जाती जिंदगी से मुतल्लिक, बहुत अच्छी हैं। आप करेंगे आपकी नमाज 1 की जगह 70 गुना बढ़ जाएगी, इट्स सो गुड, वेरी नाइस। आप फजर की सुन्नतों में पढ़ के थोड़ी देर लेट जाते हैं अपने करवट पे और दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा अजअल फी कल्बी नूरन, वेरी नाइस, ये सुन्नतें हैं, इसका सरासर फायदा आपको पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह के नबी की मुस्तकिल सुन्नत है, दायमी सुन्नत है, एवर लास्टिंग सुन्नत है, वो क्या है? दो लोग तो मुझे पता है क्लास में थे कल, आप भी थी, आप भी थी, आप भी थी, आप भी, बहुत सारे हैं जी। अल्लाह के नबी की कॉन्स्टेंट सुन्नत क्या थी जी? पीछे से
पूरी जिंदगी वो दीन हाफिज करेंगे।
शाबाश, ये है तवासो बे सब्र और तवासो बिल हक। जब आप कहते हैं ना लजी ना मानू, ये आपका अपना ईमान है, नमाजें आपकी, आपकी रोजे ही बातें, हम सिर्फ आम मनु के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए आए। दो दफा तो मुझे याद है, शायद 3 दफा कुरान पाक में, एक दफा सूरत तौबा, एक दफा सूरत सफ है, एक और जगह कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। वो जात जिसने भेजा अपने रसूल को दीन हक के साथ, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हक के साथ भेजा, दीन इस्लाम के साथ भेजा, क्यों? ताकि लियुज़हिरहू, ताकि इस दीन को गालिब करे, अला दीनि कुल्लिही, सारे दीनों पे। और लव करिहल काफिरून व लव करिहल मुशरिकून, आगे लफ्ज फर्क है। अल्लाह के नबी ने जो काम 23 साल तक किया, नबुवत मिलने से लेकर बिस्तरे मर्ग तक, वो क्या था? दीन का निफास, लोगों की अमली जिंदगी में दीन आ जाए, चलते फिरते दीन के नुमाइंदे बन जाए, ये दुनिया में चले और ऊपर फरिश्ते कहें कि वाकई इस इंसान की तख्लीक में हिकमत थी, हम समझ नहीं पाए, और हमने ऐसे ही बात पूछ ली कि अल्लाह क्यों बनाता है तो उसको जो जमीन में फसाद करेगा। देखिए, अगर सिर्फ तस्बीह होती, रोजा होता, नमाज होती, हज होता, तो फरिश्ते बहुत है। और इत्तफाक हुआ रिसेंटली अल्लाह ताला के घर को देखने का, जब आप तवाफ करने वालों को देखते हैं, जब आप सही करने वालों को देखते हैं, मस्जिदों में भाग भाग के नमाजें पढ़ने वालों को देखते हैं, तो अपना आप ऐसे लगता है मक्खी की नोक, मेरी नमाज से अल्लाह को क्या मिलना इतने पढ़ रहे हैं, मेरी अल्लाह के लिए इबादत क्या, अल्लाह की तो इतनी कर। और ये तो हमें जमीन के चंद लोग दिखते हैं ना, चंद लाख फरिश्ते, जमीनों आसमान कायनात, और जब कभी आप यूनिवर्स की कोई वीडियो देखते हैं तो आप कहते हैं शर्म कर अपने ऊपर, इतने सैयारे सितारे, इतनी गैलेक्सीज कहकशाएं अल्लाह के हुक्म पे जल रही हैं, तो तू तेरी क्या औकात है इस जमीन के, अगर अगर ग्लोब में देखे तो मैं और आप एक नुक्ता भी नहीं है, फिर अपनी बातें कुछ नहीं लगती। यानी जब सिर्फ इबादत होती तो फरिश्तों ने तो कह दिया था कि वनाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक, हम तेरी तस्वीरें भी करते हैं, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं। ये क्या इंसान को बनाने की हिकमत थी? तो अल्लाह ने क्या फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमुन, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और वो क्या था कि इंसान सिर्फ इबादत नहीं करेगा, ये तस्खीरे कायनात का काम भी करेगा, ये दुनिया में मेरा दीन नाफिज करेगा। देखिए पहला जुमला इंसान के लिए कुरान में क्या आया है, वइज़ क़ाला रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मेरा और आपका तारुफ इस कुरान में लफ्ज खलीफा से हुआ, उसके बाकी सब मानी छोड़ दें, जरूरत नहीं इस वक्त, लेकिन एक मानी उसका यह कि दुनिया में अल्लाह के निजाम को नाफिज करने वाला। आज हमारी जिंदगी दो धारी जिंदगी है, इवन जिनको आप बहुत नेक समझते हैं तो उनकी नेकी कहां तक अमूमन रुकी होती है, 5 वक्त नमाजी, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, ये भी अल्लाह जरूरत दे, ये कम लोगों की होती है, हर साल उम्रा, रमजान के रोजे, लंबी लंबी इफ्तारियां, सदका खैरात और टू मैनी थिंग्स। आज हमारी दीनदारी कहाँ आ जाती है, सिर्फ इबादत की हद है, औरत है तो पर्दा निकाब हिजाब वेरी गुड, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल बात के दीन की हदें ना टूटे। अल्लाह का निजाम हमारे घरों में, हमारी शादियों में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे जीने मरने में दिखे, ये दीन थोड़ा सा पीछे है। दो दीन साथ साथ हमें अपने माशरों में दिख रहे हैं हर वक्त, एक अल्लाह का भेजा हुआ दीन और एक वक्त और माशरे का दीन। मेरा खानदान ये चाहता, मेरी राह घर वाले ये पसंद करते, मैं ये चाहती, बिकॉज बिकॉज। और आप देख लीजिए शादी होती है हम पहचाने ही नहीं जाते, कारोबार में एक मर जाता है वो कहता है कि ठीक है मैं 5 वक्त नमाजी हूं, लेकिन दैट्स इट। मैंने आगे भी वाक्य सुनाया था कि एक दफा किसी का बच्चा अगवा कर लिया गया, यंग बच्चा, आपको पता है कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं हमारे मुल्कों में, अल्लाह सबको बचा के रखे। तो खैर कुछ दिन के बाद उनको फोन आया कि अगर अपना फलां बच्चा या बेटा छुड़वा दें 5 लाख, उस, ये बहुत पुरानी बात है, मैं खुद उन दिनों में कराची थी जबकि ये बात सुनी हुई है, आज से 10-15 साल पहले की बात है। तो कहते हैं कि 2-3 दिन बाद खबर मिली, फोन आ गया कि भाई अपना बेटा लेना है तो 5 लाख रुपए लेके उधर आ जाओ। 5 लाख उस दौर के आज के 5 करोड़ है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान में जितनी तेजी से मनी का चेंज हुई है वैल्यूज। खैर वो घर वालों ने जैसे तैसे जमा करने थे, कर करा के उन्होंने जिस जगह कहा था वहां भेजा किसी को कि जाओ और छुड़ाओ। कहते जब वहां घर गए, दरवाजा नॉक किया, तो घर में से किसी खातून ने डोर खोला और कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, अभी आते हैं कोई भी जो है। वो जो भी साहब थे वो जाके बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, बारिश, यानी एक बुजुर्ग टाइप शख्स अंदर ड्राइंग रूम में आए, बहुत अच्छे तरीके से मिले, डिसेंट तरीके से। कहते साहब आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी। कहा हाँ। आपसे मेरी बात हुई थी? हाँ। आप किधर थे? कब नमाज पढ़ने गया था। कहा आप मस्जिद में नमाज पढ़ के आए हैं अभी? हाँ। कहा अच्छा, और आप एक तरफ नमाज और माशाल्लाह आपका चेहरा सुन्नत का, तो ये क्या चक्कर है जो आपने पैसे मांगे? कहा देखो ये नमाज, ये हमारा दीन है, और ये तुमसे पैसे जो लेने, ये हमारा बिजनेस है। ये दो धारी रुख नहीं होता जब सच्चा दीन दुनिया में आता है। शायद आप में से कोई मेरे इस दर्द को महसूस कर सके, आज ये दर्द, हर साहिबे दर्द इस चीज को महसूस कर रहा है, अमली जिंदगी में, तर्ज़े जिंदगी में, मईशत, माशरत, शादी ब्याह तरबियत में, हम पूरा दुनिया वालों के साथ चल रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड। वेस्टर्न से मतलब ये नहीं है वेस्ट में रह रहे हैं, वल्लाही आज पाकिस्तान के गांव में भी वेस्ट है, मीडिया ने सारे मरहले आसान कर दिए, बल्कि यहां हमें रहते हुए तो थोड़ी सी कुछ शर्म होती है इस बात की कि गैरों में बैठे हैं। और मैंने जो तड़प और तकलीफ माओं के दिलों में वेस्ट में रहते हुए देखी है वो अपने मुल्कों में नहीं देखी। यहाँ के माँ बाप परेशान है, वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, इनको कैसे बचाएं। यहाँ वल्ला ही एफर्ट्स ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि जितनी गंदगी है उतना जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे पुल करने की तभी बचेंगे। लेकिन ओवरऑल हरम में खाना काबा के पास बैठे बच्चों को मैंने वीडियो गेम्स खेलते देखा। माँ बाप ले भी जाते हैं ना, कैन यू बिलीव कि आज हमारा दिमाग इस तरह सुन कर दिया दुनिया वाली चीजों में कि हम नमाजों के दौरान भी हो सकता है कि अपने मैसेज गिन रहे हो। अल्लाह ने दुनिया की तरक्की दी है सबको, ये रिसर्चेस, ये अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को हमारे काम पे लगाया कि तुम आईफोन बनाओ और मुस्लिम उसमें खूबसूरत किस्म के आई एप्स बनाएं और दुनिया को कुरान दें और कुरान से काम करें। हो रहे माशाल्लाह काम, वो कर रहे, फायदा चंद लोग ले रहे हैं, लेकिन बात हो रही है अमूमियत की। आखिरी बात करके आपको मौका दूंगी इंशाल्लाह, इसके बाद अब नेक्स्ट सेशंस में हम वाकई बकायदा सीखना शुरू कर देंगे। अभी आज मैंने जो कोशिश की ना वो ये सही है कि हम जो इबादत करते हैं, जो नमाज करेंगे, जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, क्या इसका कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट हमारी अमली जिंदगी में आना चाहिए? अगर आप चाहेंगे तो आप अगले वीक में थोड़ा सा रोजे का इम्पैक्ट बता के शुरू करूंगी ताकि हम रोजे का असल तो समझें। वल्लाह ही हमने नहीं समझी, हमने सच बात है वही है, रोजे का मतलब यह है कि खाना वही है लेकिन बस टाइम ड्यूरेशन जरा बढ़ा लो, बल्कि वो खाना है जो आम दिनों में भी नहीं खाते। तो हम सब सोचे हर साल रमजान आता है और बस हमें क्या सिखा के जाता है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम जिस दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं इसके अगले वक्तों में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारी नस्लों को, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये रोजा, मैं कहती हूं अगर आज के दौर में मैं और आप रोजे की असल समझ जाए ना, तो ये जो गंदगी का तूफान है ना इर्द गिर्द, जिसका हमें गम है कि हमारे मर्द और हमारे बच्चे और हमारी बेटियां इसमें इंडल्ज ना हो जाए, शऊर के रोजे रखवा लें। एक रमजान ऐसा गुजर जाए आपके बच्चों का कि जिसमें शौरी तौर पे रोजा रख लें कि लअल्लकुम तत्तकून, फिर आपको उनकी चौकीदारी नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चे घर हैं तो मैं घर हूं, बच्चे कंप्यूटर पे बैठे तो मैं सर पे बैठू। नेवर, हम कभी ऐसी पाबंदियां लगा के अपने बच्चों को बचा ही नहीं सकते, ये तो हमने उनके अंदर दीवारें खड़ी करनी है। जैसे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन सर पे था उनके बाप या माँ के, जब अजीज मिस्र की बीवी ने दावत गुना दी, परदेस भी है, तन्हाई भी है, गुलाम भी है, पहल भी औरत कर रही है, इनकार करने का नतीजा भी नुकसान की सूरत में है और जवानी भी है, घर में रहते हैं, 10 से ज्यादा उजर गिनवाए हैं मुफसरीन ने कि हजरत यूसुफ के पास इतने उजर यानी रीजंस थी उस वक्त उस औरत की दावत को कबूल करने की, लेकिन वो बचपन की बाप की तरबियत ने रोक लिया। लौला रुआ बुरहान मे रब्बे, एक बुरहान थी, अच्छी तरबियत बच्चों की गई हो, उनकी नजरों की हिफाजत बचपन में की गई हो तो वो बच जाते हैं। इसी तरह एक आखिरी वाक्य सुना के बात को पूरा करती हूँ। नबी सल्लम के एक सहाबी थे मरसद रजी अल्लाह अन्हु, सेहतमंद भी थे, चौड़े चकले थे। अल्लाह के नबी ने उनको ये काम दिया कि मदीना में जो मुसलमान आ चुके हैं हिजरत करके, कुछ लोग अभी भी मक्का में हैं, बूढ़े, कमजोर, हैंडीकैप्ड बच्चे, आप उनको मक्का वालों की कैद से निकालें। आप देखिए कितना हार्ड जॉब है ना, दुश्मन के टेरिटरी, दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को आजाद करना। खैर ये गए, उस वक्त कुछ ये लाइट्स तो होती नहीं थी, लोगों ने रात का सफर करते थे चांदनी रातों में, क्योंकि सहराओं में खुला चांद होता था तो वो एक किस्म का नाइट बल्ब का काम करता था। खैर ये गए मक्का की तरफ, शहर की फसीलें होती थी, दीवारें होती थी ताकि दुश्मन आए या कुछ आए तो पता लगे। मरसद जब शहर के पास पहुंचे तो इन्होंने दीवार फैलांगी, जब यहां गए तो इनको दूर एक औरत का साया दिखा, थोड़ा सा फासला करीब हुआ, उसी तरफ से आवाज आ गई, या मरसत, ओ मरसत, अहलन व सहलन, वेलकम, बितिंदन लैलन। आवाज से पहचान गए कि ये वनाक है, इनकी दौरे जाहिलियत की महबूबा, इस्लाम से पहले इनके ताल्लुक थे उनसे, और अब रात को वो औरत इनको देख के खुश हो गई है। लेकिन मरसत क्या बोलते हैं, कहा कि या वनाक चली जा, अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया और उसकी दावत को रिजेक्ट कर दिया। जूं ही उस औरत ने ये बात सुनी कि ये मेरी दावत को रिजेक्ट कर रहे हैं, औरत को तो बहुत चोट पड़ती है जब मर्द उसकी दावत ना कबूल करे, उसने शोर मचा दिया, ओ बस्ती वालों देखो ये तुम्हारे कैदी उड़ा के लेके जा रहा है। बस्ती वाले उठे, खैर मरसद ने जान बचाई, अंधेरों में छुपते छुपाते वापस मदीना आ गए। मदीना आए तो अल्लाह के नबी के पास आके कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या मैं उनाक से शादी कर सकता हूं? इससे भी पता चलता है कि दिल में कोई नफरत नहीं थी, अभी भी नरम गोशा था, زنا کی دعوت ٹھکرائی لیکن حلال شادی کی بات کی تو اس پہ قرآن کی دو آیتیں مختلف ہیں، سورہ بقرہ کی بھی ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یومنا، اور اسی طرح سورت نور میں الزانی لا ینکحوا الا الزانیہ، اور المشرک مشرکا یعنی منع کر دیا گیا. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ مرثد کے پاس اناق کی دعوت قبول کرنے کا کتنا سنہرا موقع تھا. نمبر ایک، یہ پردیس میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کافروں کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں تو جی ایسے چلتا ہی ہے، ایک معروف جملہ ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کا. پھر صحت مند، جسمانی اسٹرانگ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی لوگوں کو کام وہی دیتے تھے جو وہ کر سکے. پھر رات کا وقت اور چاندنی راتیں جو ویسے ہی جذبات کو ابھار دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پہل عورت کر رہی ہے، یہ بھی مردوں کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. ہم کیا کریں جب ہمیں بلاتے ہیں تو ہم صبر کیسے کریں. پھر پرانے تعلقات بھی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کی دعوت نہ قبول کی تو یہ میرا راز کھول دے گی. اتنے عذر موجود ہیں، لیکن وہاں مرثد کو کس چیز نے روکا؟ لعلکم تتقون، ان کے نفس کے تقوے نے. یہی مقصد اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا دیا، اور ایک ہی جگہ پہ بس رمضان کا ذکر ہے، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ کیے گئے تھے، یعنی اتنا نہ رو کہ یہ صرف مسلمانوں پہ فرض ہے. اور آج حیرت ہوگی آپ کو سن کر اس بات کو کہ آج ہمارے بچے جب سکولوں میں روزے رکھ کے جاتے ہیں، یا کہیں بھی پبلک پلیسز میں آپ لوگ جاتے ہوں گے، تو کئی گورے یعنی کرسچن جیوز ان پہ رحم کھاتے ہیں، اور کئی لوگ صرف اس پہ گلٹی فیل کرتے ہیں، وہ ہم مسلم ہیں، ہم کتنے بیوقوف ہم روزہ رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ روزہ صرف اسلام میں نہیں ہے، من قبلکم، حضرت نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک ہر نبی کی امت میں روزے تھے، بلکہ پہلوں کے روزے تو زیادہ سخت تھے. اس کی پوری ہسٹری ہم ان آیتوں کی تفصیل میں پڑھتے ہیں جب قرآن میں آتا ہے. تو یہود نصارہ آج جیسے لگتا ہے نا کہ ان کے ذہن میں مذہب میں روزہ ہی نہیں، ان کا بھی روزہ تھا، عمل کرنا چھوڑا تو ایسے لگا کہ ہے ہی نہیں. آج مسلمانوں میں بھی یہی حالات ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، کہ جب ہم اپنی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو یہی ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی چند نشستوں میں ہم اسی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.